समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। प्रेम धवन द्वारा लिखे गए इस गीत में नए दौर की शुरुआत और पुरानी बातों को छोड़ने का संदेश दिया गया है। गीत में देश की आजादी और प्रगति की बात की गई है, साथ ही युवाओं को आगे बढ़ने और देश को सजाने का आह्वान किया गया है। आज के परिदृश्य से ये गीत महत्वपूर्ण है, जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जब हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की। बात देश को आतंकी गतिविधियों से आजाद करने के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य की, तो जरूरी है अपने अंदर ऊर्जा का संचार करना। और इसी बदलती नई सोच के साथ कार्यक्रम परिक्रमा में मैं हूं फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही है मेरी को होस्ट शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत। नमस्कार ऑल्सो टू अवर लिसनर्स, अ वेरी हार्ट फेल्ट हेलो लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड फरहत नाज। एंड यस, आवर आर्म्ड फोर्सेस आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी, वैलर एंड करेज। वी टेक great pride in them, and Operation Sindoor was launched in the early hours of today, and we'll be providing you listeners with all the updates about that in our segment Dateline India. Also, our focus would be on business, also tributes and the capsules and reports which we have prepared for you over the next half an hour. But first, listeners, we'll begin with the news headlines first. Indian armed forces carry out Operation Sindoor against terrorists in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. 9 terror infrastructures completely destroyed.
सभी राजनीतिक दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की।
Prime Minister Narendra Modi briefs President Draupadi Murmu and Cabinet about the operation, hails armed forces.
Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, अमृतसर, चंडीगढ़ और कुछ अन्य हवाई अड्डों से आने जाने वाली घरेलू उड़ानें 10 मई तक रद्द कर दी गईं।
एंड प्राइम मिनिस्टर सेज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान रिफ्लेक्ट्स द नेशंस ग्रोइंग एस्पिरेशंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। एंड लिसनर्स, दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। Well, India launched Operation Sindoor in the early hours of May 7, 2025 today, targeting 9 terror-linked sites across Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Jammu and Kashmir. The strikes were a joint effort by the Indian Army, Navy and Air Force, lasting 25 minutes from 1:05 a.m. to 1:30 a.m., 2 weeks after the horrific Pahalgam terror attack. Indian Armed Forces targeted terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks were planned and directed against India. While briefing the media about Operation Sindoor, Foreign Secretary Vikram Misri said the investigation into the Pahalgam terrorist attack has exposed the links of Pakistan with terrorists.
Pahalgam आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं।
वहीं ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। इस रिक्त में रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।
कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान में नष्ट किए गए आतंकवादी शिविरों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, साबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था, हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे।
Also, Wing Commander Vyomika Singh of Indian Air Force informed that Operation Sindoor was launched to give justice to the victims of Pahalgam terrorist attack.
Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack, and that the strike on the terror camps were undertaken through precision capability. As shown to you, a niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation.
और अब हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह से, जो इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें और जानकारी देंगे। जी भूपेंद्र।
जी
भूपेंद्र, इसमें और क्या जानकारी है?
जी, पहलगाम हमले की बात करें तो ये बहुत ही विभत्स आतंकवादी हमला था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। और इस घटना ये इतनी विभत्स थी कि आतंकवादियों ने जो भी हताहत हुए थे उन लोगों को एकदम सिर पे गोली मारी थी, और इसके बाद जो है पूरे देश में ही जो है बहुत ही आक्रोश का माहौल था। और इस आक्रोश के माहौल के बाद ही लगातार ये मांग हो रही थी कि जो है पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और आज ये जो है ये दिन आया जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान के सियालकोट के सरजाल और महमून जोया, बहावलपुर के मरकज तैयबा मुर्दिके और मरकज सुभान स्थित आतंकी शिविरों को भारतीय मिसाइलों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहीं पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में सवाई नाला और मुजफ्फराबाद के सैदना बेलाल, कोटली गुलपुर, भीमबेर और कोटली अब्बास में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। सवाई नाला की अगर बात करें तो ये लश्करे तैयबा का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था, और लश्करे तैयबा से संबंधित संगठन ही पहलगाम हमले के पीछे जिम्मेदार था। और वही मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अजमल कसाब और डेविड हेडली को मक्का तैयबा मुर्दिके में प्रशिक्षित किया गया था, जबकि मरकज सुभान आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था। तो ये जितने भी आतंकी कैंप थे, यहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था, और इसी को निशाना बनाते हुए भारत ने इनको जो है कि कड़ा जवाब दिया। और सरकार ने ये बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवादियों के कैंपों पर हमले के तुरंत बाद कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाने का फैसला करता है तो वह दृढ़ता से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जो आतंकी शिविरों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए अभियान के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की अपनी यात्रा भी स्थगित कर दी है और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक के दौरान सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी के साथ अभी कुछ देर पहले ही बैठक की है। तो इस हमले के साथ ही भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो किसी भी आतंकी हमले पर चुप बैठने वाला नहीं है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा।
जी भूपेंद्र, और उन लोगों का क्या कहना है जो इस समय पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग मारे गए थे, जो उनके परिवारजन हैं, उनसे अगर कोई बातचीत हुई हो?
जी, आप इस हमले में जो हताहत हुए थे उनके परिवारजनों की अगर बात करें तो वे लोग बहुत ही खुश हैं। जो भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, लगातार ये मांग हो रही थी कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए और जितने भी हताहत हुए हैं लोग, उनके परिवार वाले आज बहुत खुश हैं कि भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी और आतंकवादियों को एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में उन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ और भी कड़ा कदम उठाया जाएगा।
वेल ब्रीव भूपेंद्र, नाउ टेल आवर लिसनर्स अबाउट द मॉक ड्रिल एज वेल।
शगुन, इमरजेंसी मॉक ड्रिल आर बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री टू असेस एंड स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। द मॉक ड्रिल इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन कंट्रीज रेडीनेस इन व्यू ऑफ न्यू एंड कॉम्प्लेक्स थ्रेट दैट हैव इमर्ज अमिड राइजिंग टेंशन विद पाकिस्तान फॉलोइंग द ऑपरेशन सिंदूर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रिल इज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स विद द इंडियन एयरफोर्स, as well as to test the functionality of control rooms.
Yes.
The exercise also includes training of civilians and students on the civil defense aspect to protect themselves in the event of hostile attack. Besides the provision of crash blackout measures, a provision for early camouflaging of vital installation and update of the evacuation plan and its rehearsal are also been included in the mock drill. If you talk about the national capital, the drill is conducted by National Disaster Management at 55 locations across the city, including hospitals, schools and government offices. In the drill, operation practices was done with a siren in which thousands of volunteers, police officers, rescue teams, many agencies including police, DDA, Delhi Fire Services, Jal Board, Fire Services participated.
Right.
So likewise, drill is also being conducted several parts in the country.
All right. Thank you, Bhupendra, for that update. Now moving on, leaders cutting across party lines have lauded Operation Sindoor conducted by the Indian Armed Forces. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said, Operation Sindoor is Bharat's response to the brutal killing of the country's innocent brothers in Pahalgam. He said the Modi government is resolved to give a befitting response to any attack on India and its people. Mr. Shah said India remains firmly committed to eradicating terrorism from its roots. Defence Minister Rajnath Singh, he also lauded the Indian Armed Forces. Now talking about External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, he said the world must show zero tolerance for terrorism. BJP President J.P. Nadda said, India is both capable and determined to uproot terrorism from its roots. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav, he also applauded the retaliatory action.
जी शगुन, और भारत के इस फैसले पर विपक्षी दलों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। वहीं डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़ा है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी सशस्त्र बलों को उनकी कार्रवाई के लिए सलाम किया।
Now let's provide you with information about flights as well. Well, in the wake of Operation Sindoor, several domestic flights they have been cancelled. And in its advisory, Air India informed that the flights to and from Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh and Rajkot have been cancelled till the 10th of this month. Meanwhile, IndiGo has also cancelled flights to and from Srinagar, Jammu, Amritsar, Leh, Chandigarh, Dharamshala, Bikaner and Jodhpur. And this is for today listeners.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और कहा जाता है कि अतिथि देवो भवा, यानी जो मेहमान होता है वो ईश्वर के समान होता है। तो उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव का आयोजन किया है और ये प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक और वन्य जीव महोत्सव होगा। आइए सुनते हैं।
3 दिवसीय दुधवा महोत्सव न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैविक समृद्धि का उत्सव होगा, बल्कि यह पर्यटकों को प्रकृति से जुड़ने और थारू संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी देगा। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश को बहुआयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए नवम्बर में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2000 से अधिक पर्यटक शामिल होंगे। महोत्सव का केंद्र सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक दृश्य, ग्रामीण पर्यटन, थारू जनजाति की विरासत, उनका खान पान, हस्तशिल्प, औषधि ज्ञान और जीवन शैली होगा। इस दौरान पर्यटक कैंपिंग की सुविधा का लाभ भी उठा सकेंगे। इसके लिए 3 श्रेणियों में 200 से अधिक टेंट स्थापित किए जाएंगे। वहीं स्थानीय थारू परिवारों के साथ होम स्टे की भी सुविधा दी जाएगी, जिससे पर्यटक ग्रामीण जीवन का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पर्यटक वन्य जीव सफारी का भी लुत्फ ले सकेंगे। इस दौरान गाइडेड टूर के साथ दुधवा के जैव विविधता को देखने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, महोत्सव में देश की जानी मानी हस्तियां, शास्त्रीय लोक और ग्लोबल बीट्स पर परफॉर्मेंस देंगी। इसके साथ ही यह महोत्सव स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों को मंच देने का माध्यम भी बनेगा। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Now let's take you to Odisha. Well, Odisha's Simlipal gets national park status and becomes 107th in India in a historic move. The Odisha government has declared Simlipal as India's 107th national park under the Wildlife Protection Act 1972. Well, this is located in the Mayurbhanj district. It is now Odisha's largest national park, covering 845.7 square kilometer. We have more on this from our correspondent. Also, now we'll take you live to Defence Minister Rajnath Singh.
भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है, इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो यह सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। यह तमाम प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहां के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कास्ट लगभग 1,900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है, इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी तो उसके इम्पैक्ट का
अभी आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन सुन रहे थे, जो संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है। और अब सीधे चलते हैं खेल के मैदान में और शगुन से जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, in the IPL T20 League, host Kolkata Knight Riders will face Chennai Super Kings at Eden Gardens in Kolkata this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Now, also giving you the business updates, the benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, shrugging off geopolitical tensions supported by buying across most sectors. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 106 points or 0.13% to close at 80,747. The National Stock Exchange, Nifty 50, added 35 points or 0.14% to settle at 24,414.
और श्रोताओं, अब हम आपको ले चल रहे हैं आजादी के सफर की ओर, जहां हम बात करेंगे बांग्ला कवि, संगीतकार, नाटककार, गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में।
गगने गरजे में घन वर्षा, कुले एका बसे आछे नाही भरसा, राशि राशि भरा भरा धान काटा होलो सारा।
Today we remember Gurudev Rabindranath Tagore, who was born on the 7th of May 1861 in Kolkata. Rabindranath Tagore was the youngest son of Debendranath Tagore, a leader of the Brahmo Samaj.
Rabindranath exposed British rule by chronicling all adversities with British imperialism through poetry and literary works. Tagore wanted the struggle against British rule to be germinated from the grassroots of society rather than being confined to an elite section.
During the partition of Bengal in 1905, Rabindranath provided active leadership to the Swadeshi movement, advocating boycott of British goods and promotion of indigenous products.
Banglar mati, Banglar jol, Banglar bayu, Banglar phol.
Rabindranath Tagore wrote the song Banglar mati, Banglar jol to unite the Bengali population. He also wrote the song Amar Shonar Bangla, which was later adopted as the national anthem of Bangladesh.
Gurudev is also the writer of our national anthem, Jana Gana Mana, which he wrote in 1911 to be sung at the Congress session in Kolkata.
Rabindranath Tagore brought glory to the country when he became the first Indian to win the Nobel Prize for our country in 1913 for his extraordinary work, Gitanjali.
In 1915, he was awarded a knighthood by the British Crown, which he denounced after the Jallianwala Bagh massacre as a sign of protest. In his repudiation letter to Viceroy Lord Chelmsford, Rabindranath wrote,
"The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand shorn of all special distinctions by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."
The basic thrust of Tagore's approach to India's nationhood and freedom from British rule was his emphasis on social reform and the removal of gross inequities that India's society suffered from. Reforming education, therefore, became the cornerstone of his mission for society and nation building. To this end, Gurudev Rabindranath established the Vishwa Bharati University at Shantiniketan in 1921. The noble soul breathed his last on the 7th of August 1941 at Kolkata. We also remember the freedom fighter Alluri Sitarama Raju. Alluri Sitarama Raju was born in 1897 in a village called Mogallu near Bhimavaram in Andhra Pradesh. He was inspired by the revolutionaries of Bengal to fight against the British government.
Alluri is remembered for leading the Rampa Rebellion against the British in the early 1920s. The Madras Forest Act 1882 disrupted the lives of the tribal people. It barred them from engaging in their traditional agricultural activities. Alluri organized the tribal people of Visakhapatnam and East Godavari districts to revolt against the oppressive British regime.
Between the years 1922 and 1924, Alluri and his men stormed several police stations and killed many British officers and stole arms and ammunition for battle. The British were finally able to capture him. The barbaric British police tied him to a tree and shot him on the 7th of May, 1924.
The people honoured him with the title Maniam Virudu, which translates to Hero of the Jungle. 1986, India Post released a commemorative stamp in honour of Alluri Sitarama Raju.
और रविंद्रनाथ ठाकुर के बाद अब हम याद कर रहे हैं भारतीय लेखक गायक अभिनेता नर्तक और रविंद्र संगीत के उस्ताद शांतिदेव घोष को बंगाली साहित्यिक पत्रिका देश के प्रसिद्ध संपादक सागर मोए घोष उनके छोटे भाई रहे भारत सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय विद्वान घोषित किया गया साल 2002 में संगीत में उनके योगदान को भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया
Also, we are remembering another writer here, Malati Vishram Bedekar, Marathi writer basically, and she discovered insights into the lives of women from various socio-economic backgrounds. Let me name some of her works here. She wrote Hindolyavar, she wrote Virlele Swapna, and also Shabri, one of her very famous works.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल का उन्हें रणजीतराम पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया जीवी पन्नालाल पटेल के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक रही
Well, listeners, today we are also remembering Acharya Atreya today. It's his birth anniversary. Well, poet, lyricist, playwright and also a screenwriter known for his works basically in Telugu cinema and also Telugu theatre. He received the State Nandi Award for Best Lyricist in the year 1981 for Andamaina Lokamani from the film Tholikudi.
और हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार प्रेम धवन की आज पुण्यतिथि है उन्होंने अपने करियर में कई शानदार गीतों को दिया जिसमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है शामिल है साल 1946 में प्रेम धवन ने फिल्म धरती के लाल से गीतकार के रूप में शुरुआत की इसके अलावा उन्होंने आराम तराना आसमान शोला और शबनम काबुलीवाला के लिए भी गीत लिखे
Well, he has been ranked among the top 10, his songs basically, which he has penned down for the top 10 patriotic songs always. And also when it comes to the sweet joys of love or all of pain and complaints of separation, his songs are very, very well remembered. He was honored by the government of India in the year 1970 with Padma Shri and also he has been the winner of the National Film Award for Best Lyrics
इन द ईयर 1971।
जी शगुन, और शुरुआत में हमने जिस गाने की बात की थी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, वो भी प्रेम धवन द्वारा ही लिखा गया था।
बिल्कुल सही।
और अब इसके साथ ही वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारी लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर। नमस्कार।